ओम शांति। प्यारे बाबा ने, बाबा का मतलब होता है बाप दादा, क्योंकि इकट्ठे हैं। प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को जन्म लेते ही बादशाह बना दिया। सारे दुनिया में, सारे कल्प में कोई भी नहीं हो सकता जिसको जन्म लेते ही बादशाही मिल जाए। दुनिया में श्री कृष्ण को राजकुमार का रूप दिखाने के लिए उसको मोर मुकुट लगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो बादशाह नहीं बनता मुकुट लगाने से। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को, सभी बच्चों को, दुनिया में किसी भी बादशाह के जितने बच्चे होंगे सारे बादशाह नहीं बनते, लेकिन प्यारे बाबा ने सभी बच्चों को जन्म लेते ही बादशाहत दे दी। कैसे? ये स्मृति का तिलक लगा दिया, ये अविनाशी तिलक है। फिर बाबा ने हमें दिल का तखत दे दिया और पवित्रता का ताज दे दिया। तो ताज भी मिल गया, तिलक भी लग गया और तखत भी मिल गया, वो भी जन्म लेते ही। इसलिए बाबा कहता है, दुनिया में हर माता पिता कह देते हैं मेरा राजा बच्चा, लेकिन बाबा कहता है वो तो कहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर राजा बने, लेकिन बाबा ने तो सचमुच मेरे राजे बच्चे बना ही दिया। अब जो ही हमारा जन्म हुआ तो हम बन गए राजा बच्चे। वर्तमान संगम पर भी हम क्या है, सो राज्य अधिकारी है, और भविष्य में फिर हम विश्व राज्य अधिकारी है। अब बाबा कहते हैं कि राजा तो हैं, तो वास्तव में राजा फिक्र वाला होना चाहिए, बेफिक्र वाला? राजा और फिक्र, कोई कहे पहले कहानियां होती थी स्कूल में, वंश माताएं बैठी, इंग्लिश तो नहीं, बहुत सारी माताएं तो जानती हैं कि वंश अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग एंड ही वाज पुअर, कहानी शुरू होती थी। एक बहुत समय पहले एक बादशाह था और वो गरीब था, तो कहानी का तो मतलब ही ऐसा होता है। लेकिन कोई कहे कि एक राजा था और वह फिक्र वाला था, तो उसको तो राजा नहीं कहेंगे। परंतु समय की बात है, समय की बात क्या कहती है कि राजा तो राजा ही होता है, लेकिन जब उसकी परिस्थिति बदलती है तो ना तो वह राजगद्दी छोड़ सकता है, ना अपना टाइटल छोड़ सकता है, लेकिन उसके अंदर फिक्र लग जाता है। तो फिक्र वाला बादशाह, आपने कोई फिक्र वाला बादशाह देखा है? हाँ, जैसे आजकल के नेता हैं, वही बादशाह हैं जो राजगद्दी लक्ष्मी नारायण ने संभाली, राम सीता ने संभाली, आज वो नेता संभालते हैं, वही राजधानी, उसका नाम भी राजधानी रखा हुआ। तो साथ साथ फिक्र भी है, कई तो बोल देते हैं कि हमारे सिर पर कांटों का ताज है, ताज तो है लेकिन परेशानी का दुख देने वाला ताज है, रात को नींद भी नहीं आती, अपनी ही गद्दी का चिंता रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर फिक्र हटा दो तो एक साधारण व्यक्ति भी बादशाह है, और फिक्र लग जाए तो बादशाह भी बादशाह नहीं है। और आप जानते हैं कि बादशाही के संस्कार होते हैं, कई बादशाह बन जाते हैं लेकिन उनमें बादशाही के संस्कार नहीं होते। तो बाबा हमको क्या कहता है कि मैंने तो आपको जन्म लेते ही बादशाह बना दिया, तो हमारे अंदर कौन से संस्कार होंगे बादशाही के, तो चेक करना है कि बादशाह तो बना दिया लेकिन मेरा ताज कायम है, मेरा तिलक मिट तो नहीं गया, टीका तो नहीं बन गया, और तखत से मैं उठ तो नहीं गया। तो इसलिए ऐसा भी कहा जाता है, बाबा ने हमको अपना कायम रखने के लिए बताया हुआ है कि बादशाह जो होता है वो कभी मांगता नहीं है, वो हमेशा देता है। तो इसलिए बाबा ने हमारा स्लोगन क्या बनाया कि मांगने से मरना भला। अब देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, बादशाह और बादशाहत ये कोई शरीर के ताज तख्त और तिलक से नहीं आती, ये संस्कारों में होती है। जो बादशाह है वो बादशाह ही रहता है, किसी भी परिस्थिति में आ जाए बादशाह। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे जो मांगते नहीं है, हमने सारा भक्ति मार्ग में क्या किया, दो युग मांगते ही रहे, तो बादशाह तो चली गई और बादशाहों के आगे जाके भक्ति में झुकते रहे, देवी देवताओं के आगे झुकते रहे। आज भी कोई नकली पाठ बजाने के लिए देवी देवता बन जाए, मान लो रामलीला में राम सीता बन जाए, है तो साधारण व्यक्ति लेकिन उसके आगे अगर रामलीला को प्राइम मिनिस्टर भी ओपनिंग कर रहा है तो उसके आगे झुकेंगे, उसे आशीर्वाद लेंगे। कई बार सड़कों पर मंदिर होते हैं तो लोग जब गुजरते हैं तो वहां झुक के गुजरते हैं, कार वाले कार खड़ी करके गुजरते हैं, तो वो बादशाहों की यादगार है। अब देवी देवता नाम ही है देवता, किसी से कुछ लेते नहीं और उनको सब कुछ मिलता है। मूर्ति कभी बुलाती है कि आओ यहाँ फूल रख जाओ, फल रख जाओ, कुछ अपना पुष्पम पत्रम रख जाओ, नहीं, पर मिलता है। तो बाबा हमें भी कहता है कि आप बच्चे भी देखो, सारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मांगता नहीं है, और जो कोई गलती से इसमें से मांग लेता है, चाहे वो डायरेक्ट मांगे या रॉयल तरीके से मांगे, और मांगने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक तो दिखती हैं और एक नहीं दिखती हैं, मान शान की इच्छा रखना क्या है, मांगना है, मैं कहना, मेरा कहना, میرا نام لسٹ میں نہیں آیا تو مانگنا ہو گیا. تو بابا کہتے ہیں مانگنے سے مرنا بھلا, مانگنے سے بھی کچھ مل جائے تو وہ کوئی بادشاہ ہی نہیں ہوتی, وہ بھیک ہے. تو بابا کہتا ہے میرے سے بھی بھگت لوگ بھیک مانگتے رہے ہیں اور میں دیتا بھی رہا ہوں. آج کل تو مانگنے والے ادھیکار سے مانگتے ہیں. آگے مانگنے والا کہتا تھا جو دے جائے اس کا بھلا, جو نہ دے جائے اس کا بھلا, کیونکہ سارے تو دیں گے نہیں, پر وہ بھلا سب کا کہہ دیتا تھا. بھلا کہنے میں کچھ پیسہ تو نہیں لگتا. آج کل مانگنے والا بھی کیا کرتا ہے, جو دے جائے وہ تو ٹھیک, جو نہ دے جائے اس کا بھلا سوچتا ہے یا کوئی شلوک پڑتا ہے اس کے لیے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن سنسکار میں رائلٹی رکھنی ہے, ایسے نہیں کہ بڑھیا بڑھیا وستر پہن کر بڑھیا بڑھیا راجا کی کاپی کر کے میں بھی راجا بن گیا. ہاں تو بابا کہتے اس کو سوانگ کہتے ہیں, سوانگ نکلی راجا. ہاں لوگ اس کو دیکھتے کہیں گے تو سوانگ رچا ہوا. ایسا جو راجا ہوتا ہے اس کے کہیں بھی کسی بھی پرستھتی میں ہو, سنگم پر بابا کہتے ہیں اندریوں کے راجا سو راجیہ ادھیکاری, آپ کو کشٹ آ جائے, شاریرک روگ آ جائے, مانسک طوفان آ جائے, پرکرتی سے طوفان آ جائے, تو اس سمے راجا کی سٹیج میں رہتے ہیں یا سوچ میں لگ جاتے ہیں اب کیا ہوگا, ارتھ کویک آ گیا, مکان ہلنے لگ گئے, سوچ میں پڑ جاتے ہیں. کئی تو بنا ارتھ کویک آئے بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے 6 منزل کا مکان تو بنا لیا, اگر ارتھ کویک آیا پھر کیا ہوگا. اخباروں میں خبریں پڑھتے ہیں کہ دلی میں ارتھ کویک کا سمبھاونا ہے, ارتھ کویک زون ہے, ابھی تک آیا نہیں. تو کہتے ہیں آئے گا تو کیا ہوگا. تو بابا کہتے ہیں اس کو بے فکر بادشاہ کہیں گے, نہیں کہیں گے. دوسری طرف ہمارے دیش میں ایک سکندر تھا, وہ بھی بادشاہ تھا, ہمارے دیش پر حملہ کرنے آیا تھا. تو اس کو کئی بار بھارت کے راجا نے بھگا دیا, پر ایک بار اس نے دھوکہ کر کے بھارت کے راجا کو پکڑ لیا اور اس کو بندی بنا لیا اور اپنے سامنے بندھا ہوا لا کے اس کو بولا, بولو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, آپ سب جانتے ہیں. وہ کیا بولا, پہلے تو اس کو حیرانی ہوئی, ہے وہ بندھا ہوا پر ہے اصلی بادشاہ, سنسکار ہے بادشاہ کے. پہلے اس کو حیرانی ہوئی کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے پوچھ رہا ہے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, بادشاہ کو پتا نہیں ہوتا کہ بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. سچ مچ اس نے دل میں سوچا, اس نے بول دیا کہ جو سلوک ایک بادشاہ دوسرے سے کرتا ہے وہ کرنا ہے آپ کو. اور سکندر تو بےچارا شرم میں آ گیا, یہ اصلی راجا, اس کو باندھ بھی لیا گیا پر باندھنے سے یہ تھوڑی کہ راجے کے سنسکار نہیں رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک راجا دوسرے راجا سے کرتا ہے, اب میں تو نکلی ہوں, میں تو آ کے اکرمن کرنے کے جیسے لٹیرا ہوتا ہے آگے ہوں, میں بادشاہ نہیں ہوں. اس کے بعد سکندر آیا ہی نہیں بھارت میں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو بیچ کے پیریڈ کی کہانیاں ہیں. اوریجنل میں بابا کہتے ہیں میرے بچے, اچھا ہم چھوٹے سے ایریا کی ہے, جیسے آج کل کی دنیا ایریا میں بٹ گئی, سارا ورلڈ بھارت ہوتا تھا, और भारत की राजधानी सारे वर्ल्ड की दिल्ली होती थी। आज दिल्ली में ही देखो कितने एरिया हैं। एक उसमें राजौरी गार्डन भी है, नाम तो उसका भी राजा से शुरू होता है। फिर उसमें कितने और एरिया हैं, तो उसके हम बादशाह हैं क्या? बाबा कहता है बेहद के विशाल दिल के बिना किसी लिमिट के राजा बनो। तो इसलिए ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो है राजा तो नहीं है अभी, लेकिन बाबा ने हमको क्या बनाया है? राजाओं के भी राजा। देखो देवताओं को भी राजाओं को भी राजा कहते हैं। अब ब्राह्मणों को तो ब्राह्मण का पूजा पहले करते, देवता का नाम बाद में लेते हैं। ब्राह्मण देवा देवी देवाय नमः। तो हमको तो बाबा ने क्या किया? ईश्वरीय वर्षा दी है बादशाही का। और ईश्वरीय वर्षे में हमारा टाइटल क्या है? हमारे टाइटल बाबा ने छोटे छोटे स्लोगन के रूप में दिए हुए हैं। क्या टाइटल दिया हुआ? अपरापत कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में, पा लिया था जो पाना, आगे क्या है काम क्या बाकी रहा। तो जिनको भगवान मिल गया, परमात्मा मिल गया जो रचेता है, तो उनका कैसे होंगे? वो तो बादशाहों के बादशाह होंगे। इसमें आपने नोट किया, किसी भी प्रकार की अप्राप्ति, आजकल तो प्राप्ति पर मुरलियां चल रही है, क्योंकि प्राप्ति होगी तो संतुष्टता होगी। किसी भी प्रकार की इच्छा बादशाह नहीं बनने देती। हमारा स्लोगन क्या है? इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। अब बाबा कहते हैं इसे दुनिया के अंदर, आज दुनिया के जितने लोग हैं सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान है? चाहे वो अमीर है चाहे वो साधारण है, इच्छाओं से परेशान है। इतनी इच्छाएं हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अब बाबा कहते हैं कि आपको उनकी इच्छाओं को समाप्त करना है। कैसे करोगे? इसके लिए बाबा कहते हैं इच्छाओं को समाप्त वही कर सकता है जिसकी स्वयं इच्छा ना हो। जैसे आग को पानी बुझा सकता, आग को आग तो नहीं बुझा सकती। तो अब बाबा कहते हैं कि मैंने बच्चों को क्या कहा होगा कि आपको वानप्रस्थी, आपको बाबा कहता है इस समय बेहद की विराग वृत्ति की स्टेज में रहना है। क्यों? कि ये जो दुनिया है इसमें रखा क्या है? बाबा कहता है डर्टी वर्ल्ड, कीचड़ की दुनिया, छी छी बहुत नाम दिए हैं बाबा ने। तो ऐसी दुनिया से तो नफरत आती है, इच्छा की तो बात छोड़ो। तो जो आत्माएं सचमुच इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा है, माता जी जो माताएं बैठी हैं, चलो भाई भी जोड़ लेते हैं, कौन कौन सच्चे नष्टो मोहा हैं अपने? देखो देखो हमारे भाई ने तो बोल दिया, कौन कौन सच्चे नष्टो मोहा हैं? हाथ उठाएंगे जो मोह होता है वो व्यक्तियों से होता है। तो कौन कौन नष्टो मोह है? कई तो ये भी समझ लेते हैं इससे मेरी बनती नहीं इसलिए मैं नष्टो मोह हूं। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है असली दिल से। अब नष्टो मोह का सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है? आजकल किसी भी चीज का जो मास चल रहा है स्मृति दिवस, तो उसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हर एक को पता है कौन है? कौन है? ब्रह्मा बाबा है कि नहीं। नष्टोमों का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास कोई होना आपका नष्टोमो है, किसी माता के संतान हो ही ना और वो कहे मैं बच्चों से नष्टोमो हूं। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने देखो हीरे जवाहरात के व्यापारी बाबा ने कहा बच्चे बाट चलते बामन फंसा, मेरा बच्चा तो बाबा ने कभी उसके बाद वो लाइफ को ध्यान नहीं दिया, लौकिक संबंधियों को छोड़ दिया। यहां तक कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए कितने साल हो गए, उस वक्त तो बाबा कहता है थोड़े से केंद्र थे, बच्चे भी थोड़े से थे, विदेश में तो बच्चे थे ही नहीं। उस वक्त शिव बाबा ने कहा आ जाओ बच्चा, तो ब्रह्मा बाबा ने एक घड़ी के लिए सोचा कि बाबा अभी तो स्थापना ही नहीं हुई, अब मैं ब्रह्मा तो मैं हूं, मैं मां हूं, तो अगर मैं ही ऊपर चला गया तो फिर क्या होगा, सोचा नष्टोमो। इसी प्रकार से हमको चेक करना है, ऊपर से तो हम आसानी से कह देते हैं, लेकिन ये मोह के संस्कार इतने महीन हैं। आप कहेंगे मुझे मोह नहीं है, पर अंदर से चेक तो होगा। गीता में सारे विकारों को छोड़ने की बात है, जो लास्ट में जाके छूटता है, गीता का लास्ट श्लोक है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, इतना पकड़ा हुआ। पहली बात तो यह है अपने शरीर से मोह है जी, अपने शरीर से मोह है। बाबा तो कहता है शरीर है तो शरीर तो विनाशी है, पहला हमारा पाठ है, लेकिन शरीर से मोह है। आत्मा के नाम पर ब्राह्मण शरीर से मोह रखते हैं, मोह होगा शरीर से बहाना करेंगे आत्मा का। आप गौर से देखिए हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। बाबा कहता है संगम युग बड़ा अमूल्य है, ये शरीर तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल है, इसलिए इस शरीर का बहुत ध्यान रखना, क्लास भी मिस करके सैर जरूर करना, सेब जरूर खाना। अच्छा अब बताओ ये क्या है, है शरीर का मोह, बहाना लगा रहे हैं संगम युग का, तो बाकी वैसे संगम युग को कैसे बताते हैं, कितना वैल्यू करते हैं उसकी, वो सब जानते हैं। इसलिए उसी ख्याल से शरीर के नाम पर ना करते, शरीर की सेवा है, समझेंगे हम आत्मा उन्नति कर रहे हैं। तो इसलिए अगर शरीर ही मोह नहीं छोड़ सकते तो शरीर के साथ और जितने हैं तो छूट नहीं सकता। इसलिए पहले पहले कहते हैं दे और देखें, तो पहली बात तो दे ही हो गई। ब्रह्मा बाबा ने कैसे दे त्याग किया, क्योंकि हमारा दूसरा लेसन भी है कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो कहते हुए, आत्मा और आत्मा दूसरों को सुनाते हुए फिर शरीर से मोह, तो इतना आसान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी मुरली में आया था कि ब्रह्मा बाबा की कापियां दिखाओ, आया था ना। अब उस काप में क्या लिखा हुआ, ब्रह्मा बाबा अभ्यास करते थे अपनी पत्नी का नाम, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा, यशोदा आत्मा यशोदा आत्मा यशोदा, कापियां भरी और फिर उसको पढ़ किया। हमको बाबा कह देते हैं बच्चे हरेक को आत्मा देखना, स्वयं को भी आत्मा समझना, प्रैक्टिकल कितना करते हैं। अगर आत्मा देखते होते स्वयं को आत्मा समझते होते तो सोचते कि मैं बढ़िया स्वेटर पहन लूं, सोचने की बात है, मेरा जूता बढ़िया हो जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं नाम लेते हैं आत्मा का, तो जब आत्मा ही बिंदी, पहली बिंदी जो बाबा ने राज का स्मृति तिलक लगाया और ये स्मृति मास है और बाकी हम स्मृतियां कर रहे हैं, तो इसलिए हमको देखना कि अगर हमने सचमुच बादशाह बनना है तो सबसे पहली बात क्या है, फिक्र कौन लाता है? तो फिक्र लाता है मैं और मेरा। देखो कोई व्यक्ति आके किसी होटल में ठहरता है किसी नए शहर में, और साथ वाले कमरे में कोई व्यक्ति कील ठोक रहा है कैलेंडर लगाने के लिए, तो आपको आवाज आ रही है कि कील ठोका है, पर आपको कोई तकलीफ होती है कि दीवार में कील क्यों ठोक रहा है, दीवार खराब हो जाएगी? आप कहते हैं तो होटल का कमरा है, हैं? और कील ठोक रहा है, मेरा क्या जाता है, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ। अच्छा, अब वही आपका घर हो और आपने किराए पर दिया हुआ हो और साथ वाले कमरे में किराएदार कील ठोक रहा हो, तो आप क्या करेंगे, हैं? आप जाके कहेंगे अरे दीवार को क्यों खराब कर रहा है? क्योंकि मेरी है। अगर आपका रुमाल भी गुम हो जाए बैठे बैठे, तो आप मेरा रुमाल किधर गया, मेरा रुमाल, अरे भाई तुमने देखा, अब बताओ। तो ये जो मेरा है ये मोह, तो जब शरीर को मेरा कह दिया तो मोह तो मोह हो ही गया, शरीर को तो मेरे के बजाय भी मैं मानने लग गए। ब्रह्मा बाबा ने बहुत साल पहले मुझे ये लेसन सिखाया था, मैं मधुबन में, मुझे बहुत सौभाग्य रहा है ब्रह्मा बाबा से मिलने का। तो हुआ क्या कि मैं एक लिहाज से नष्टो मोह होने की कोशिश की, मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, अब वो भी बाबा के बच्चे थे, तो उनके तीसरे ड्रेस थे, ड्रेस होते हैं ना ऑफिस जाने के ड्रेस थे, तो मैंने सोचा कि मुझे फिट थे, मैंने सोचा लोग ब्राह्मणों को दान करते हैं, हाँ, मैं तो खुद ही ब्राह्मण हूं, तो क्यों ना मैं पिताजी के ड्रेस रख लूं। अच्छा, तो मैंने रख लिए। अच्छा, यज्ञ की बचत क्या है, साफ सोचा। अच्छा, तो माउंट आबू में तो कोई सूट बूट पहनता नहीं, कोई सूट बूट वाला होता भी है तो यहाँ अपना नॉर्मल ब्राह्मण ड्रेस पहनता है। आप देखेंगे कोई नया भी आ जाए सभा में एक दिन बैठ जाए तो लगता है हंसों में कौआ बैठा है, वो तो जाके बाहर से कुर्ता पजामा खरीद के आएगा। अच्छा, तो हमने यहाँ आके तो वो ड्रेस पहन, लेकिन लास्ट डे जब हम लोग विदाई लेते हैं तो हमारा, उन दिनों में पंजाब में मेरी नौकरी थी, तो कोयले वाले इंजन होते थे, चलती थी ट्रेन की स्लो भी चलती थी, तो सारा कोयले के कालक लग जाती थी बॉडी पे, तो आते समय और जाते समय हम लौकिक ड्रेस पहन, तो जाते समय विदाई लेने मैं बाबा अपने पिताजी की ड्रेस पहन के बड़ी थी, मैं बाबा से विदाई लेने चला गया। अब क्या हुआ, बाबा क्या करते थे, उन दिनों भारत में रेडीमेड कपड़े का रिवाज नहीं था, आजकल तो ना रेडीमेड, वो तो भारत देवताओं का देश है, तो दर्जी को कहेंगे ये छोटा कर ये बड़ा कर, इस तरह का देश है, तो विदेश में हांगकांग में कपड़े होते थे, तो सिंधी लोग आते थे जब यज्ञ में तो कुछ रेडीमेड ड्रेस ले आके बाबा को दे देते थे। और बाबा क्या करते थे, कोई ऑफिस जाने वाला हो उनके लिए रख लेते थे, कोई ऑफिसर वगैरह चलो ये पहन लेगा, तो बाबा ने मेरे लिए एक ड्रेस रखी हुई थी, तो बाबा बोले लो बच्चे, और बाबा की दी हुई ड्रेस बीच बीच में मुझे मिलती रहती थी, उसके कारण से मेरी कंपनी में मुझे बेस्ट ड्रेस्ड ऑफिसर गिनते थे, तो कहते थे इसके पास ड्रेस कहाँ से आते हैं इतने, ये नहीं पता था इस बाबा देता। तो बाबा जब मुझे देने लगे तो जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना अपनी कार्रवाई दिखाता है, तो मैंने कहा बाबा देखो ये मेरे लौकिक पिता की ड्रेस है, कितनी फिट है, और मैंने ऐसे 30 ड्रेस रख लिए हैं। तो बाबा मुस्कुराए, बोले बच्चे बाबा का पहनेगा तो बाबा याद आएगा, लौकिक बाप का पहनेगा तो लौकिक बाप का। अब ये मैं वाली कहानी है। सचमुच मैंने नोट किया कि जब मैं वो ड्रेस पहनता था जरूर ख्याल आता था लौकिक पिता का, और सारे दिन में भी जैसे लौकिक पिता को ही पहना हुआ हो तो मुझे ध्यान तो आता था पिताजी का ड्रेस है। तो मैंने बाबा से शिक्षा ले ली और दिल्ली जाके अपने 30 के 30 ड्रेस बंडल बना लिया और अगली बारी माउंट आबू ले आया कि यज्ञ में सरेंडर कर देंगे, फेंकने तो थे नहीं। मैंने यज्ञ में सरेंडर कर दिया। अब यज्ञ में कौन सूट बूट पहनता, तो अगली बार जब उससे अगली बार मैं मधुबन आया तो एक भाई धोबी घाट पे कपड़े धो रहा था और उसने मेरे पिताजी की पीली बुशर्ट पहनी हुई थी। तो मैंने कहा ओ मेरे पिताजी की बुशर्ट। तब मुझे ख्याल आया कि देखो मैंने उसको सरेंडर भी कर दिया, अपने से भी उतार दिया, पर उसका भूत अभी भी कायम है कि मेरे पिताजी की ड्रेस। तो मैं रोज पहनता तो क्या होता। अर्थात अगर आपने फिक्र से छूटना है तो मैं से छूटो और मेरे से छूटो, आपको चिंता नहीं रहेगी। लगता यह है कि हम मैं और मेरा कह के सुखी हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये एक सोने का पिंजरा है। तो एक तो यह है कि मैं और मेरे से छूटो, दूसरी बात ये तो बाहर का रूप है। बाबा कहता है जो बेफिक्र होगा वो हल्का होगा। तो आपके ख्याल में इस दुनिया में हल्के रहना हो और बेफिक्र रहना हो तो क्या करना पड़ेगा। बाबा रोज मुरलियों में सुनाता है क्या कि साकार में रहते हुए अपने आप को लाइट, डबल लाइट, फरिश्ता रूप रखो, क्योंकि फरिश्ता तो हल्का होता है। अच्छा, अब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो फरिश्ता बन गए, लेकिन उससे पहले जब साकार शरीर में थे अव्यक्त होने से पहले, तो भी तो उनकी कोई स्टेज रही होगी, अचानक थोड़ी फरिश्ता बन गए। हम भी अगर कोशिश करें अच्छी तरह से बैठ जाएं, खूब मन लगा के कि मैं डबल लाइट होके फरिश्ता बनता हूं, करके देखिए क्या होगा, क्या होगा, कितनी देर बनेंगे। जैसे वो पालतू कबूतर होता है ना, उड़ता है फिर थोड़ी देर बाद फिर करके नीचे आ जाता। तो परी नहीं काम करेंगे तो फरिश्ते की जगह थोड़ी देर हम मन से सोचेंगे लो मैं फरिश्ता बन गया, आ हा हा हा, लेकिन फिर नीचे आ गए, क्योंकि फरिश्ता बनना कोई खेल नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है। तो एक तो यह है कि मैं पहले तो संकल्प करूं मैं फरिश्ता बनना है, हल्के बनना है, क्योंकि बेफिक्र बादशाह बनना है। अच्छा, फरिश्ता को कोई फिक्र हो सकता है, है? मान लो कि किसी ने किसी के 20,000 रुपए देने हैं, यहां तो दुनिया में ढूंढ लेगा उसको, लेकिन अगर वो फरिश्ता बन जाए तो ढूंढ सकता है, नहीं ढूंढ सकता। फरिश्ते को पुलिस पकड़ सकती है, फरिश्ते के पेट में दर्द हो, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा, फरिश्ते को कुछ खाना पीना हो उसके पेट में दर्द हो सकता है, नहीं, क्योंकि सारा काम सूक्ष्म है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उससे पहले फरिश्ता बनने की सारी कंडीशन पूरी, ऐसे नहीं बन गए कि अच्छा मैं फरिश्ता बन जाऊं। ये एक अभ्यास है, ये भी जरूरी है। हिला के देखो, मान लो आपने फरिश्ता बनना है तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हो अब मन से यहां आके बैठ जाओ, बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो? अच्छा, तो आपको क्या लगेगा कि देखो शरीर यहां पड़ा है, मैं वहां बैठी हूं या बैठा हूं। और छोड़ो, सपने में देख लो, सपने में तो आपका शरीर पड़ा है, आप सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कभी ऊपर से गिर जाते हैं, दर्द भी होता है, लेकिन है तो फरिश्ता, लेकिन ये टेम्परेरी है। क्योंकि किसी भी चीज को कितना भी ताकत से ऊपर फेंको फिर क्या होगा, नीचे आ जाएगी। इसलिए एक तो हमें श्री मत पर पूरा चलना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा सबसे ज्यादा श्री मत पर चलते थे कि नहीं? बाबा कहते थे मैंने कभी मुरली मिस नहीं की, शिव बाबा ने यहां से बोला मैंने यहां से सुन लिया, है ना। और तो कोई होगा कभी ना कभी थोड़ी बहुत दो शब्द भी मिस कर देगा। और श्री मत का प्रत्यक्ष फर्स्ट जो पासवे जानवर है वो ब्रह्मा बाबा है। तो उन्होंने सब बच्चे जानते हैं जो उस वक्त थे कि अव्यक्त होने से काफी समय पहले तक ब्रह्मा बाबा न्यारे न्यारे लगते थे। अपने कमरे में बाबा ने चित्र रखा हुआ था लक्ष्मी नारायण का, उसकी तरफ देखते रहते थे और पैर हिलाते जैसे खुशी से, और आते थे कोई बात कर रहा है सुन भी रहे हैं, लेकिन उसको ऐसे लगता था कि बाबा कहीं और है, सुन तो लेता था। तो ये अभ्यास किया। तो पहली बात है अगर हमने श्री मत में मन मत मिक्स करी या पर मत मिक्स करी या पर चिंतन मिक्स किया, तो जैसे पेट्रोल मिक्स हो जाए, अगर मोटरसाइकिल कार का होगा तो फिट 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 करेगा, अगर हवाई जहाज के पेट्रोल में मिक्स हो जाए या रॉकेट के पेट्रोल में मिक्स हो जाए तो क्या होगा, हैं? आप रॉकेट भेजोगे बृहस्पति ग्रह पर, पहुंच जाएगा शनि ग्रह पर। यही होता है। अब आपके मन ने जाना है, फिरस्ता बनना है, लेकिन आप देखिए आप बैठ गए मैंने सूक्ष्म वतन में जाना है, अकारी फरिश्ता रूप धारण करना है, थोड़ी देर में क्या होगा, आप रजौरी गार्डन पहुंचे हुए हो गए, क्या हुआ भाई, उधर को घूम गया। तो अगर मन के अंदर मन मत कहां रहती है, हैं? मन मत पड़ोसी के घर में रहती क्या? मन के अंदर अगर मन मत है तो फिर आप उसको जब तक ठीक नहीं करते। आजकल बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा से प्यार है ठीक है, सिर्फ बाबा से प्यार है, अर्थात कि 100% श्री मत को मन मत बनाए। हम क्या करते हैं, जो जो अच्छी अच्छी चीजें बाबा कहते हैं ना हमारे पसंद की, उसको हम कह देते हैं बाबा आपकी श्री मत पूरी फॉलो। बाबा कह देता है बच्चे बैठ के थोड़ी योग लगाना है, तुम हठ योगी थोड़ी हो, घूमो फिरो मौज करो योग लगाओ, चलो ताजमहल चलते हैं, बस बुक करा लो, है क्या है, बस योग लगाते हुए खाते पीते गीत बजाते हुए जाएंगे। अब बाबा ने गीत बजवाए लेकिन धीरे धीरे गीत की एक लाइन कर दी, उसके बाद वो लाइन भी उड़ा दी। जैसे कोई छत डालता है तो नीचे सपोर्ट रखता है, हटाने के लिए रखता है ना। अच्छा अब बताओ, वो बात तो हमने पसंद कर ली कि बाबा कहते घूमो फिरो, और जो बाबा कहते एकाग्र बनो, एक नामी बनो, इकोनॉमी करो। अच्छा बाबा कोशिश करेंगे, वहां हम कोशिश करते हैं, उसमें कोशिश नहीं करते। अर्थात कि हमको गौर से देखना चाहिए कि फरिश्ता बनने के लिए दूसरी बात ये भी है। तीसरी बात, हमने अपने पिछले भी कर्म विनाश कर लिए हैं सारे। आपने उधार देना हो किसी का है? और आप कहो जी मैं यहाँ गांव छोड़ के भाग जाता हूँ, यहाँ तो चल जाता है लेकिन उस लोक में जाने के लिए हमको अपने पिछले हिसाब किताब तो करने हैं कि नहीं करने? और अगर हमको करने हैं तो बाबा कहते हैं उसको किए बगैर थोड़ी तुम फरिश्ता बन जाओगे। जब तक हम योग की लगन की अगन से ज्वालामुखी बना के उसको भस्म नहीं करेंगे तो हम फरिश्ता नहीं बन सकते, टेम्परेरी बन जाएंगे। अच्छा फिर बाबा ने हमें जो ताज पहनाया था, एक पहनाया था या दो? हमारी हर चीज डबल है ना, डबल ताज धारी, तो दूसरा ताज किस चीज का पहनाया ब्राह्मण को? रोहित भाई दूसरा ताज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी का ताज। आखिरकार तो बाबा कहता है हर चीज में, बाबा कहेगा करो और कराओ। अब बाबा ने दूसरों के लिए यानी करवाया ना, अच्छा बाबा कहते खुश रहो खुश रखो, उड़ते रहो उड़ाते चढ़ो। तो जो दूसरा पार्ट है जिम्मेवारी का ताज, अर्थात हमने अन्य आत्माओं को भी, एक जना थोड़ी सतयुग में जाएगा, तो अन्य आत्माएं कम से कम दो तरह की हैं, एक ऊपर भेजना है और एक को सतयुग में भेजना है, वो कौन करेगा? तो जो हमारी जिम्मेवारी है अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो फरिश्ता बनेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की और उसे भी ज्यादा जिम्मेवारी लेने के लिए त्याग किया शरीर का। देह त्याग तो सब करते हैं, इसलिए किया ब्रह्मा बाबा ने, एक तो मेरी स्पीड बढ़ जाए, फिर होगा तो मैं थोड़ा सा काम जो मिलेगा उसको मिल सकूंगा। अब बाबा कहते मैं फ्री हूं, एक सेकंड में कहीं भी पहुंच जाता हूं। दूसरे मेरे बच्चों को भी मैंने सिखाना है वानप्रस्थी, अपने जीवन काल में अपने बच्चों को सारा कारोबार देखते हैं। सतयुग में भी जो महाराजा महारानी है वो अंत तक नहीं रहते कि हम शरीर छोड़ देंगे तो राजगद्दी मिलेगी, अपने जीवन काल में राजगद्दी देते हैं। अब भारत दुनिया में आज एक ही क्वीन है, वो 99 इयर्स की हो गई है, उसका प्रिंस बूढ़ा हो गया, उसने राजगद्दी नहीं छोड़ी, नहीं तो अपने जीवन काल में दे देती, अच्छा बेटा तू राजा बन जा, आजकल ऐसा है। इसलिए बाबा कहता है कि आपको वो जिम्मेवारी भी निभानी है तो कितने काम हो गए, तब जाके हम सचमुच फरिश्ता बन सकते हैं। लेकिन उसका अभ्यास करने के लिए बाबा हमको कहता है कि सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर दुनिया में कौन सा है बताओ? सारे विश्व के बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर हैं, सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर कौन सा है? हाँ? मूल वतन में तो हिलता जुलता भी नहीं, आपको पता भी नहीं मेरे पड़ोस में कौन बैठा है, वहां आप रिट्रीट क्या करोगे? अभी आत्मा तो चली जाती है वो तो ठीक है, लेकिन वहां तो रिट्रीट का मतलब क्या होता है? वहां तो पता ही नहीं लगता, यहां आपको पता है मूल वतन है, मूल वतन में तो आपको ये भी पता नहीं लगे कि मूल वतन है। इसलिए सूक्ष्म लोक, फरिश्ता लोक, जिसमें आप चल फिर सकते हो, और वहां पर आप देखें फरिश्ता कितना भी है। कभी आप देखा फरिश्ता सोया हुआ है, फरिश्ता कुर्सी पर बैठा है, फरिश्ते को कोई तकलीफ हो रही है, फरिश्ता एक जगह बंद गया? नहीं, फ्री। और बाबा ने कह रहे खुला निमंत्रण, कोई भी आए वहां, और बाबा भी सूक्ष्म लोक में है। तो मुझे बाबा ने कहा था जब मुझे लास्ट ईयर बहुत ज्यादा शारीरिक तकलीफ हो गई तो मैं हॉस्पिटल में क्या करता, रू रिहान ज्यादा करता था, तो एक दिन बाबा ने मुझे दिखाया कि देखो बच्चे तुम बाबा बा कह के कई ऐसी बातें कर लेते हो कि चलो बाबा देख लेगा। हा? तुमको खाने पीने का शौक है और तुमको सूखी बीमारी है सौ, फिर भी तुम मीठा खा लेते हो, भो खूब खा लेते हो, अब तक तो ठीक था, बाबा देख लेगा। पर बाबा ने मुझे कहा अब से देखना, आखिरकार तुमको ठीक तो होना है, तो तुमको जब भी इच्छा हो सूक्ष्म लोक में आ जाएगा। मुझे साफ साफ दिखा कि तुम सूक्ष्म में आ जाया करो, जो खाना हो मैं बाबा खिलाएगा। लो जी, उसके बाद सचमुच मैंने देखा कि कोई भी चीज आपको लिए वहां तो बाबा इमर्ज कर देता। आप एक मिठाई कहोगे इमर्जी चाहिए, वो तो पूरी दुकान इमर्ज कर देगा। तो मैंने देखा कि मेरे को सचमुच दो चार बार मैंने दिखाया, उसके बाद मुझे स्कूल में इच्छा ही नहीं रही कि भाई ये नहीं, ठीक है पेट भरा। जैसे फल वाले का फल से पेट भर जाता है देखकर, हैं, फल वाले को आप नए साल में एक फल का डब्बा के गिफ्ट दो, क्योंकि नया साल है, वो क्या हंसेगा कि नहीं हंसेगा। इसलिए बाबा कहता है अप्राप्ति तब होती है जब कोई चीज ना मिले। सतयुग में देवी देवता कोई ज्यादा खाते हैं क्या? जरा जरा, लेकिन संतुष्ट हैं, क्योंकि बहुत है यहाँ पर, बहुत तो लोगों को इच्छा पैदा होती है। कोई कह दे जी रजौरी गार्डन में आज पानी नहीं आना म्यूनिसपैलिटी का, लोग क्या करते हैं, हैं, सारी बाल्टियां भर के रख लेते हैं, पतीले भर के रख लेते हैं, कटोरी भी भर लेते हैं कि मेरे पास तो पानी आना चाहिए। एक घंटे बाद वो कह दे नहीं नहीं आज पानी आना है, तो बहा देते हैं। इसी प्रकार से इच्छा जब आपके पास अथाह हो जाएगा, आपको इच्छा कहाँ होनी है। इसलिए बाबा कहता है कि सूक्ष्म वतन में आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, और जितना मर्जी खा लो आपका पेट भी खराब नहीं होगा, क्योंकि वहां तो सूक्ष्म लोक है। आप गौर से देखिए कि वास्तव में मनुष्य आत्मा को शरीर के बगैर ही सारी संतुष्टि हो सकती है। सपने में होती है कि नहीं होती है? और सूक्ष्म शरीर हो और आत्मा हो, आप मिल सकते हैं, हंस सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, वहां ट्रैफिक जैम नहीं होगा सूक्ष्म लोक में। इसलिए बाबा कहता है कि सूक्ष्म का अभ्यास यहां करो। फिर क्या होगा, अगर हम सूक्ष्म का अभ्यास यहां करेंगे, आगे आगे आपको पता है प्रकृति के बहुत बड़े बड़े पेपर आने हैं। अभी तो प्रकृति के पेपर थोड़े आते हैं, बहुत बड़े बड़े तो पहले से के सोच न्यूज पढ़ते हैं। अच्छा, वो कहते हैं 2 साल के अंदर दिल्ली में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। अच्छा, अब बाबा कहता है तो उससे परेशान होते हैं, तो फिर चिंता वाला बादशाह हो गया, फिक्र वाला। इसलिए बाबा कहता है कि तुमने ही प्रकृति को इनवाइट किया है। हमने कहा बाबा पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया चाहिए। अब नई दुनिया चाहिए होगी तो नई दुनिया में तो प्राणी तो खत्म होगी नहीं होगी, पुराने मकान ढहेंगे टूटेंगे तभी तो नई बनेगी। तो प्रकृति को हमने झाड़ू दिया कि सारी सफाई करो, अब हम ही डरते हैं कि प्रकृति को कर रही। इसलिए बाबा कहता है कि यहां रहते हुए अव्यक्त रूप धारण करके उसको प्रकृति के बहुत चीजें आएंगी, शरीर का रोग आएगा, अनेक प्रकार की आएंगी, तंग करने वाले आएंगे, लेकिन आपको उससे न्यारे रहना है। और उससे न्यारे लेने का अभ्यास करना है तो बेफिक्र बादशाह के साथ एक और भी शब्द आता है, और वो है बेगमपुर का बादशाह। अब ये बेगमपुर क्या है? बेगम, जिसमें किसको कोई गम ना हो। मुसलमान लोग अपनी पत्नी को बेगम कहते हैं कि कमाने कमूने तो मैं जाऊंगा, तो बेगम बेफिक्र होके घर में मौज करो। अच्छा, तो सचमुच ये होता है, राष्ट्रपति बनता बहुत वोट वगैरह लेकर और फर्स्ट लेडी फ्री बन जाती है। उसको विदेश में जाएंगे तो उसका अलग प्रोग्राम बनाएंगे, तेरे को शॉपिंग करानी है। तो सचमुच बेगम जो है, तो बाबा कहता है कि बेगमपुर कौन सा है? आपने रेगड़पुरा देखा होगा और पुरे देखे होंगे, हैं, कई लोग तो 12 पुरे का नाम लेते हैं, हवा चलेगी, कानपुर, नागपुर, लेकिन बेगमपुर कहाँ? रोहित भाई फिर बताओ, हैं? सूक्ष्म लोक, आप सूक्ष्म लोक में जाओ तो कोई गम नहीं, और वहां के बादशाह कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। फिर उसको आप ठीक कह रहे हैं कि दुनिया में इस लोक में अगर बेगमपुर है और बेफिक्र बादशाह है तो संगम युग पर है, क्योंकि संगम युग में एक शब्द है हमारा अलौकिक, सारा कुछ हमारा अलौकिक है। और हम अगर लौकिक में रहते हुए अलौकिक कर लेंगे, अलौकिक में मैं नहीं होता, तो आप बेफिक्र रह सकते, ना सिर्फ बेफिक्र रह सकते हैं, इंद्रियों को तो आपने जीत लिया, अति इंद्रिय सुख में रह सकते हैं, जो देवताओं को भी नसीब नहीं है, और क्या चाहिए। इसलिए हमें मैं को, मेरे को, मन मत को छोड़ना है, और हमारी जो पिछले भी कर्म है, साथ साथ बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग करो, वो विनाश करने हैं। आत्माओं को संदेश देना है, वो बाबा ने कहा मनसा सेवा के द्वारा देना है। जो हमारे अंदर धारणा है दुनिया को चाहिए, वो आप दे सकते हैं। जैसे हमने कहा दुनिया में इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो आप अगर मनसा सेवा करनी चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि बाबा को याद करके, दुनिया को इमर्ज करके, अपनी बेहद की विराग वृत्ति की किरणें फैलाएंगे, तो जैसे आग पर पानी पड़ता है ऐसे उनकी इच्छाएं ठंडी होंगी। दुनिया में भय बहुत है आज, लेकिन आप क्योंकि मां अभिमानी है, भय मृत्यु से शुरू होता है और चीजों, तो आप वो किरणें दे करके दुनिया का भय घटा सकते हैं। ऐसे ही शांति देना है, प्रेम देना है, ये काम हम करेंगे तो हमारा सचमुच फरिश्ता बनने के लिए तैयारी पूरी होगी। ओम शांति। Thank you.
सौंप दो प्यार।